ओम शांति। जब हम इस क्लास में आते हैं तो कभी ना कभी हमको टॉपिक मिल ही जाता है ना। हम सब जो यहाँ बैठे हैं कभी ना कभी भाषण तो दिया ही होगा। तो हमारा सीरीज चल रहा है कि भाषण की कला पर, उस पर एक हो गया है जो सुशील भाई जी ने लिया था कि भाषण कैसे करें। तो आज उसका सेकंड सेशन है, उसमें टॉपिक मिला है भाषण को प्रिपेयर कैसे करें। एक बार जब हमको टॉपिक मिल जाती है तो उसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो कभी हमको, जैसे आज हमको 40 मिनट बोलना है या 35 मिनट्स बोलना है, कभी हमको 10 मिनट बोलना होता है, कभी 5 मिनट, कभी हमको इंस्टेंट मेथड मिलता है। तो हर टाइम हमको क्या करना है, कैसे करना है, तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले जब कोई टॉपिक मिलता है तो उसका पर्पस क्या है, कि जब भाषण देना है तो मुझे किसी चीज के बारे में मैसेज देना है ऑडियंस को, या कुछ समाज की सोच है उसको परिवर्तन करना है उस पर मुझे बात करनी है, और कहीं किसी चीज के बारे में सिखाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कहीं जाकर भाषण देना है राजयोगा मेडिटेशन के बारे में, तो मुझे किसी को उसके बारे में नॉलेज देनी है। तो क्या पर्पस है? हमेशा जब भी हमको टॉपिक मिलती है, हमारा एक पर्पस होना चाहिए कि इस टॉपिक से मुझे क्या सीखने मिलने वाला है। कोई भी टॉपिक हमारी ऐसी ना चली जाए। तो जो भी टॉपिक हमको मिलती है कि इस टॉपिक से मैं क्या सीखने वाली हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर ही उसका गोल सेट करना है कि अच्छा ये गोल है और उसके आगे फिर बढ़ना है। तो पर्पस क्या है हमारा? सेकेंड है ऑडियंस। किस ऑडियंस के सामने हम जाके बात करने वाले हैं? अगर हम, जैसे कि अगर किसी माताओं के सामने हमको भाषण देना है, तो हम ऐसे शब्द यूज नहीं कर सकते जो माताओं को समझ में नहीं आए, है ना। हम वहां पर यूज करें डिजिटल डिटॉक्स और हम कंप्यूटर और ऐसे एग्जांपल्स दे जो उनको समझ में ही नहीं आए। हमको तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम बड़ा अच्छा भाषण करके आ गए, लेकिन हमारी ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये बोलना क्या चाहते। जैसे कि अगर हम कहीं कॉरपोरेट सेक्टर में जा रहे हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी जाते हैं ना, अलग अलग जैसे विंग्स में जाते हैं ना, कोई मेडिकल में, कोई इंजीनियर में, ज्यूरिस्ट में, स्ट्रेस मैनेजमेंट टॉपिक है। लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट हर एक के लिए अलग अलग तरह से हमको समझाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कोई कंपनी में जाके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भाषण करना है मुझे, वहां पे जाके मैं अपने मेडिकल प्रोफेशन डॉक्टर्स का एग्जाम्पल नहीं दे सकती कि पता है ना डॉक्टर्स को कितना टेंशन रहता है, कितना स्ट्रेस रहता है, बार बार उठना पड़ता है इमरजेंसीज में, तो ये स्ट्रेस है। तो ये एग्जांपल्स हम उस ऑडियंस के सामने नहीं रख सकते। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस क्या है। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे कोई विलेज में जा रहे हैं, है ना, कोई गांव में जा रहे हैं, तो कितने हमारे शब्द कैसे होने चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑडियंस कौन सी है। जैसे कभी कभार मिक्स ऑडियंस मिलेगी, तो मिक्स ऑडियंस को अप्रोच करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेडिकल विंग का कोई क्लास चल रहा है, सारे डॉक्टर्स बैठे, लेकिन उसमें आके दूसरे भी बैठ जाते, तो आगे आगे आपको माताएं दिखेंगी, भाई बहनें दिखेंगी, तो सबको अप्रोच करना पड़ेगा। तो उस लेवल पर बात करनी पड़ेगी कि ऑडियंस हमारी कौन सी है। थर्ड पॉइंट है इन्फॉर्मेशन, गैदर करना। जब भी कोई टॉपिक मिल जाए तो ऐसा नहीं समझना कि मुझे सब कुछ आता है इस पे। पहले तो स्टार्ट करना सोचना कि मुझे इस पर क्या क्या आता है, पहले वो नोट डाउन कर लेते, फिर उसके बारे में रिसर्च करना। हर टॉपिक को रिसर्च करना है, ऐसा नहीं है कि हमको सब पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार हमें टॉपिक मिला था स्पिरिचुअल सेल्फी, तब तक हमको पता ही नहीं था कि सेल्फी लेते कैसे। तो हमने देखा था बहुत हमारे कजिन्स को कि वो सेल्फी कैसे लेते थे, तो हमने उनको एक क्वेश्चन पोस्ट किया कि व्हाई डू यू टेक अ सेल्फी। तो उनको ऐसे पूछा कि सेल्फी क्यों लेते हो आप, हर एक को भेजा, सब कजिन्स को, सब छोटे छोटे, तो उन सबके रिप्लाई आए कि वो सेल्फी क्यों लेते। तो एक अप्रोच था इसमें कि सेल्फी के बारे में पता करना था, तो उन्होंने बताया कि हम ये सेल्फी इसलिए लेते। तो उस पर हमने फिर अपनी क्लास को डिजाइन किया और 12 पॉइंट्स निकाले थे कि सेल्फी से ही होता है। और जब हम उसके बारे में पढ़े तो हमको पता चला कि सेल्फाइटिस करके डिजीज भी होती है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, हमको लगता है हमको सब आता है। इसीलिए इंटरनेट पे जाके गूगल भी करना है कोई टॉपिक मिल गया तो। उसके बारे में रियली रिसर्च करना पड़ेगा अगर आपको सचमुच अच्छा भाषण देना है तो. फिर लाइब्रेरी में जा सकते हैं. जब बुक्स में सर्च करके हो गया, गूगल पे देख के हो गया, तो लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं और लाइब्रेरी में भी इतनी सारी बुक्स है उसको रिफर कर सकते हैं. सपोज हमको टॉपिक मिल गया संतुष्टता, है ना. अब संतुष्टता पे मुझे क्या क्या पता है वो तो ठीक है, लेकिन बाबा ने अव्यक्त वाणियों में क्या क्या बोला है संतुष्टता के बारे में, दूसरों ने संतुष्टता के बारे में क्या क्या बोला है, इसके बारे में मैं क्या एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, ये सब रिसर्च करना है. जैसे अभी हमारा एक सीरीज चला ना आदि रतन, तो आदि रतन कि कोई कोई आदि रतन के बारे में बुक में दिया हुआ है, किसी किसी के बारे में बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो जिन्होंने भी यहां पर आदि रतन के बारे में कहा उन सब ने रिसर्च की. जैसे श्रद्धा बहन को टॉपिक मिला था आदि रतन लच्छू दादी, वो तो बुक में था ही नहीं, लेकिन उन्होंने सबसे जाके पूछा, खुद का अनुभव सुनाया, तो हमको इतनी गहरी गहरी बातों के बारे में पता चला लच्छू दादी के बारे में, नहीं तो हमको पता ही नहीं था. तो इतनी माइन्यूट डिटेल्स उन्होंने उस क्लास में बताई. तो इस तरह से जो भी टॉपिक मिले उसको गूगल करना, इंटरनेट पे जाना, या तो अपने कलीग्स को पूछना, सबके एक्सपीरियंसेस पूछना उसके बारे में. तो जब ऐसी कोई क्लास हम प्रेजेंट करेंगे ना तो फिर वो अच्छी लगती है. तो इस हिसाब से इन्फॉर्मेशन गैदर करना. फिर है सपोर्टिंग आउटलाइन. आउटलाइन लिखना, जैसे कि बाबा ने एक मुरली में भी कहा था कि आप जब भाषण करने जाते हो तो उसको लिखो, उस भाषण को, और फिर वेरीफाई करो, उसको देखो कि कैसे लिखा है आपने उस भाषण को. साकार मुरली में अभी रिसेंटली ये पॉइंट आया था. तो भाषण को लिखना, अब भाषण को लिखना इसका मतलब ये नहीं कि वर्ड टू वर्ड लिखना. जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने ये पूरा भाषण वर्ड टू वर्ड लिखा है. तो वर्ड टू वर्ड कोई चीज लिखनी नहीं है. अगर हम वर्ड टू वर्ड लिखेंगे तो हमारा आई कांटेक्ट भी नहीं रहेगा जब हमारे हाथ में नोट कार्ड्स होंगे. तो वर्ड टू वर्ड कुछ नहीं, लेकिन मेन मेन पॉइंट्स जो हम कवर करेंगे उस क्लास में वो आउटलाइन लिखना है. जैसे कि कोई टॉपिक मिला कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में मैं किस किस चीज पर बोलने वाली हूँ तो उसकी पूरी आउटलाइन होनी चाहिए. तो जो भी टॉपिक मिले उसको एक पेपर पे नोट डाउन करना. नेक्स्ट पॉइंट है ऐड सपोर्ट्स. ऐड सपोर्ट्स का मतलब कि जो क्लास हमने लिखी मेन मेन पॉइंट्स, अब इस क्लास को श्रृंगार करना है तो कैसे श्रृंगार करेंगे उस क्लास का. तो कोई ना कोई स्टोरीज से या कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी ऐड कर दी, या कोई एक्सपीरियंस या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें ऐड कर दिया. जैसे उस दिन इंग्लिश मुरली रिवीजन दिया था पवित्र बहन ने, उन्होंने वर्ड टू वर्ड मुरली नहीं रिवाइज करी थी, उन्होंने मुरली के मेन पॉइंट्स उठाए थे, उसको कनेक्ट किया था एग्जाम्पल से, अनुभव से, वो किससे मिले, कौन से कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ. तो इस तरह से अपने अपने भाषण को श्रृंगार करना है कि कौन से एग्जाम्पल्स कहाँ सेट करने. अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी एग्जाम्पल कहीं पर भी फिट करने की कोशिश करें, ये भी ध्यान देना है कि कहीं पर भी कुछ भी नहीं लगाना है. तो सपोर्टिंग एड्स कि हम भाषण तो देंगे लेकिन भाषण के अंदर क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे, तो ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से एक भाषण बहुत अच्छा लगता है ना. अगर 15 मिनट बात करनी है या 40 मिनट बात करनी है तो उसमें अगर हम यज्ञ से कोई अनुभव डाल सकते हैं, या ब्रह्मा बाबा की लाइफ से, या मम्मा या दादी की लाइफ से, तो जो भी हमने सुना है उसको हम उसमें ऐड करते जाएं. तो ये है सपोर्टिंग एड्स. तो आउटलाइन, फिर सपोर्टिंग एड्स. नेक्स्ट पॉइंट है नोट कार्ड्स. मुरली में हमेशा आता है कि हाथ में है ना पेपर ना रखो और भाषण ना करो, है ना. लेकिन जब आप बाहर की दुनिया में जाएंगे तो बहुत बार ऐसे होता है कि हाथ में नोट कार्ड्स होते हैं, यानी कि ना ऐसे छोटे से कार्ड्स रखेंगे. जैसे आपने डॉक्टर गिरीश पटेल को देखा होगा, उनके हाथ में हमेशा नोट कार्ड्स होते हैं, वो एक बोलते हैं और हटाते जाते हैं उसको. तो इसमें नोट कार्ड्स मतलब छोटे छोटे पेपर पर आपने बुलेट पॉइंट्स लिखे हो जो मेन पॉइंट्स हमको कवर करने हैं. जैसे मुझे आज भाषण देना है तो मैंने कुछ 12-14 पॉइंट्स निकाले. फर्स्ट था पर्पस, फिर था ऑडियंस, फिर था गैदर इन्फॉर्मेशन, फिर आउटलाइन, सपोर्टिंग एड्स, है ना, और नोट कार्ड्स. तो ये मेरे माइंड में है कि ये मेरे बुलेट पॉइंट्स है और इस पे मुझे बात करनी है, और इसके आगे मैं हिंट्स लिख सकती हूँ खाली कि पर्पस में मुझे ये बात करना है, गोल. ऑडियंस में मुझे बात करना है माताएं, कॉर्पोरेट सेक्टर, विंग्स, है ना. तो ये हमको याद रहेंगे, ये हमारे हाथ में हो क्यों वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है, नहीं तो ऑडियंस से कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, फिर मैं पूरा देख देख के ही बोलते जाऊंगी पूरा। तो पूरा देखते के नहीं, बट मैंने सिर्फ टॉपिक देखी और मैंने ऊपर होके पूरे पॉइंट्स बोलना चालू किए और एग्जांपल्स बोलना चालू किए। तो नोट कार्ड्स हम बना सकते हैं जब भी हम बाहर जाए कहीं पर भी क्लास लेने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है नोट कार्ड्स को नंबर करना, जैसे इसमें कैसे नंबर किया 1, 2, 3, क्योंकि वहां पे ऐसा ना हो कि नोट कार्ड हाथ से गिर जाए और फिर हम उसको घेरने की कोशिश करें पकड़ने की, तो वहां पर हलचल नहीं होनी चाहिए। तो नोट कार्ड्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरी पूरी बड़ी पेपर जो हम यहाँ लेकर आते हैं वो छोड़ना है अभी, तो वो बड़ी पेपर्स ना लाए और ऐसे कुछ पेपर। वैसे तो सबसे पावरफुल भाषण वो होता है जिनके हाथ में नोट कार्ड्स भी ना हो और जो बिना पेपर के बात करे, है ना। तो वो भी हम देखेंगे कि मेमोराइज कैसे करना है स्पीच को। तो अगर हमारे हाथ में पेपर्स नहीं है, हमारे हाथ में नोट कार्ड्स नहीं है, यानी कि स्पीकर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, लोग उसको उस नजर से देखते हैं कि इनका कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है, ये एक पावरफुल स्पीकर है और बहुत नॉलेजेबल दिखते हम जब हमारे हाथ में कोई पेपर वेपर कुछ नहीं होता है तो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, स्पीचेस में दिया है कि आप नोट कार्ड्स पकड़ के बोल सकते हो। तो ये हो गया नोट कार्ड्स, और उसको नंबर करना है, याद रखना उसको नंबर करना है कि किसके बाद क्या बोलना है। नेक्स्ट पॉइंट है विजुअल एड्स। कभी कभार कोई कोई टॉपिक ऐसे होती है जिसमें हमको विजुअल एड्स की जरूरत पड़ती है, जैसे अगर हम राजयोगा मेडिटेशन पे क्लास कराने जा रहे हैं तो अगर हमने कोई विजुअल दिखा दिया तो उनको कनेक्ट होने इजी होता है, उनको समझने के लिए इजी होता है। कहते हैं कि इंसान की 40% मेमोरी ज्यादा होती है जब वो सुनता है और देखता है, तो 40% उनको ज्यादा रिटेन होता है। तो इसीलिए जहां पर हम उसको यूज करना है उस यूज करें, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी फिट करने की कोशिश करें कि टाइम खींचना है तो कुछ विजुअल दिखा दे, ऐसा नहीं करना है। जहां पे जरूरत है, जैसे अगर चित्र के सीढ़ी के चित्र के बारे में बात करनी, अब मैं सिर्फ सीढ़ी के चित्र में बात करते जाऊं तो उनको नहीं समझेगा, लेकिन मैं अगर सीढ़ी का चित्र दिखाऊं और बात करूं तो समझ में आएगा। तो पता होना चाहिए कि विजुअल एड्स हमको कहां कहां यूज करने हैं। फिर हर भाषण का 3 पार्ट्स होता है, एक होता है स्टार्टिंग, ओपनिंग, एक मेन बॉडी और एक एंडिंग, कंक्लूजन। तो हमारा ओपनिंग बहुत इम्पैक्ट के साथ होना चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे आई और आज ना मेरा टॉपिक है, ऐसे मैं बात करूँ, आज ना मुझे बोला है इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे बात करना है तो आज की चर्चा इस पे रहेगी, तो बोरिंग लगता है बहुत, है ना। आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है तो हम आज हैप्पीनेस के बारे में बात करेंगे, तो आज मेरा टॉपिक है। ये जो लैंग्वेज है ना, इसको चेंज करना है। ओपनिंग बहुत इम्पैक्ट के साथ होना चाहिए कि जो बैठे हैं वो बैठे रहे, उठ के ना जाए। तो क्योंकि सामने वाले को लगना चाहिए कि क्या हो गया। देखो जब ये स्पीच देते टाइम पे अगर ऐसी कोई डिस्टर्बेंस भी हो ना तो स्पीकर ने डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये भी एक पॉइंट है, इसके बारे में अभी बात कर लेते। कई बार ऐसा होगा कि कोई अपना मोबाइल चेक करेगा बैठ के, कई बार होगा कि कोई उठ के चला जाएगा, कई बार होगा एक दूसरे से बात करेंगे, कई है ना ऐसे कुछ गिर गए देखो वो, तो ऐसे कुछ भी होगा। लेकिन स्पीकर को हलचल में नहीं आना चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज है वैसी। और ये टाइम पर कोई ना जोक क्रैक करने आना चाहिए हमको, जैसे सुशील भाई बहुत माहिर है इसमें, तो है ना ह्यूमर कहाँ यूज करना है वो भी बात करेंगे, ह्यूमर कहाँ यूज करना है स्पीच में, तो ताकि सारा ऑडियंस लाइट हो जाए, तो ये ध्यान में रखना है। तो हम बात कर रहे थे ओपनिंग विथ इम्पैक्ट, तो ओपनिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कई बार स्पीकर्स को देखा होगा आपने स्टोरी से चालू करते वो, एक तो आपको एक लेंथी टाइम मिल जाता है कि 5 मिनट 7 मिनट्स की स्टोरी बोल दो, है ना। और स्टोरी से स्टार्ट करके कुछ मॉरल उसका बताने के बाद लोगों को लगता है हाँ इस स्पीच में मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो या तो कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई लोग शायरी से चालू करते हैं, शायरी बोलते हैं और कविता बोलते हैं, या कोई जोक्स से स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग ऐसा मेमोरेबल होना चाहिए और सामने वाले को लगना चाहिए जैसे हम एक बार ज्ञान सरोवर में गए थे अपना एक्सपीरियंस सुनाने, तो एक भाई बाद में आके बोले कि पहले मैं सोच रहा था चले जाऊं उठ के, मैं सोचा कि क्या बोलेंगी क्या पता, ऐसे मुझे बोला के क्लास के बाद तो बोले लेकिन है ना फर्स्ट दो लाइन सुनी ना तो सोचा बैठ जाऊं। तो ओपनिंग हमारा क्या होना चाहिए, अगर हम कहीं पर भी जाए या बाबा के महावाक्य यूज कर सकते कि आज बाबा ने साकार मुरली में ये कहा, या तो जब भी हमारे जो सेशंस होते हैं हमारे यहाँ पे गीत बजता है ना और गीत में सब बैठते हैं, तो जब गीत भी बजता है तो या तो हम उस गीत की लाइन को ही उठा के अपना क्लास चालू कर सकते हैं, या तो कोई कोई स्पीकर्स को देखा होगा वो लोग योग से चालू करते हैं, जैसे शिवानी बहन को देखा होगा वो पूरे ऑडियंस को काम कर देते हैं जब वो गीत बजता है, फिर भी वो अपनी है ना एक दो मिनट की कॉमेंट्री करते और फिर चालू करते हैं, तो ऑडियंस का अटेंशन उससे बढ़ जाता है। तो ओपनिंग विद इम्पैक्ट, ये बहुत ध्यान देना है इस पर। और कंक्लूजन, कंक्लूजन भी ऐसा होना चाहिए कि है ना यहाँ से लेके क्या जाए, क्योंकि बहुत कुछ बोलता है स्पीकर लेकिन आप क्या चाहते हो कि ऑडियंस क्या लेके जाए वो हमको पता होना चाहिए। तो जैसे कि अगर मैंने बोले कि आज की क्लास में मैंने 12 पॉइंट्स बोले, तो उस 12 पॉइंट्स को या तो रिवाइज करवा दो तो उनको पता चलेगा कि क्या लेके जाना है, या तो कोई मेमोरेबल होना चाहिए मतलब याद रखे, या तो कोई खुशी वाला जोक क्रैक करे कि उनको याद रह जाए वो पॉइंट और फिर वो यहाँ से उठ के जाए, तो जो हमारा एंडिंग है वो भी बहुत मेमोरेबल होना चाहिए। और इस पे बहुत काम करना है, बहुत कम स्पीकर्स इस पे काम करते हैं ओपनिंग और एंडिंग, वरना हम बोलते ना ठीक है तो आज की क्लास इस पर थी ओम शांति, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट ऐसे जो अच्छा एक और पॉइंट है, अगर कोई जोक होता है स्पीच के टाइम पर तो ऑडियंस को ना हंसने देना, हाँ ऑडियंस हंस ले, हंसना उनका बंद हो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है कि नहीं खुद भी हंसना है, जितना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जितना हम इंजॉय करेंगे ना बोलना उतना ऑडियंस इंजॉय करेगी, अगर मैं ही सीरियस बैठू तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे वाइब्रेशंस ही नहीं जाएंगे वो, तो स्पीकर को बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और पंच लाइन है ये कि इंजॉय करते हुए क्लास देना है तो ही सामने वाला इंजॉय करेंगे, नहीं तो वो नहीं इंजॉय करेंगे आप अगर सीरियस रहेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिश योर स्पीच, एडिट योर स्पीच, तो उसमें कैसे है कि कभी कभार हम सोचते हैं ना कि हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है भाषण प्रिपेयर करने के लिए, कैसे प्रिपेयर करें, इतना टाइम कैसे बोलना है क्या बोलेंगे, तो जैसे हम एक चीज करते हैं कि हम ना वॉकिंग पे जाते हैं या तो तैयार होते हैं या तो कुछ ऐसी चीज जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं यूज करना पड़ा उस टाइम पे हम चिंतन करते हैं और फिर रूम पर आकर पेपर पे लिखते जाते हैं कि जो पॉइंट्स हमारे माइंड में आए, जैसे हाफ एन आवर वॉकिंग की, वॉकिंग के बाद जब रूम पर आए तो पेपर पर लिख देते कि ये पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स लिखते जाना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हर पॉइंट पूरी क्लास में बोले। क्या होता है अगर हमारे पास 5 दिन होते हैं, जैसे ये टॉपिक हमको एक हफ्ता पहले मिला, अब हमारे पास इतनी सारी पॉइंट्स आ गई, अब मुझे सब थोड़ी ना जाके बोलना है, याद भी नहीं रहेगा, मेन मेन पॉइंट्स ही बोलने हैं, स्पीकर को लगता है कि है ना जितना पढ़ाऊ ना सब सुना दूं, तो वैसे नहीं होना चाहिए, हमारे वर्ड्स भी बहुत तोल मोल के होने चाहिए जो लोगों को याद रहे। तो एडिट योर स्पीच, पूरा नहीं बोलना है, तो लिखते जाना है उसमें से क्या मैं बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको ऊपर लेना है, तो ये हमको पता होना चाहिए, तो एडिट एंड पॉलिश योर स्पीच। नेक्स्ट है टाइमिंग, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बजे हम चालू कर रहे हैं कितने बजे खत्म कर रहे हैं, ये देखो बेल लाने की जरूरत यहाँ पे इसीलिए पड़ी क्योंकि स्पीकर्स बोलते ही जाते और टाइम बेल बजती तो भी हम लोग नहीं रुकते, तो टाइमिंग होना चाहिए। तो उसमें कहते हैं कि वॉच या तो हमारे सामने हो या कहीं साइड में हो जिसपे हम देखें, और जब 5 मिनट बाकी है हमारे भाषण को खत्म होने में तो हम उसको कंक्लूड करना चालू करें हमारे भाषण को, ताकि एकदम जल्दी जल्दी ना हो जाए। तो भाषण देने से पहले ही रिहर्सल करनी है उसकी, पहले ही या तो अपनी फ्रेंड को सुना दो या अपने ग्रुप में डिस्कस करो या तो बाबा के रूम में, जैसे हम कहते हैं ना कि बाबा को जाके सारे पॉइंट सुना दो, तो आपको पता चलेगा अगर आप 7 से 7:30 बैठ रहे हो और सिर्फ अपना भाषण ही बोल रहे मन में तो वो है ना इतना टाइम में मैं बोल सकूंगी, तो हमको पता चलता है कि कितना टाइम लगेगा भाषण देने में। और नेक्स्ट पॉइंट है चेकलिस्ट, अभी हम कहीं भाषण देने जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि चेयर के अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, है ना, हम कहाँ पे खड़े रहेंगे, कैसे बात करेंगे. दूसरा, जिनको ग्लासेस होती है याद रखना कि एक्स्ट्रा पेयर लेके जाना है, क्योंकि कभी भी ग्लासेस टूट भी सकती है. तो जैसे कि एक भाई डॉक्टर सचिन का ही हुआ था एक बार एक बार है ना वो कहीं भर्ती कराने गए और है ना गिर गई, चश्मा गिर गया और टूट गया. तो उनके पास नेक्स्ट पेयर था, लेकिन वो फ्लाइट में जब बैठे तो शायद उन्होंने सीट पर रखी और उस पर बैग रखा और वो भी टूट गया. और जब वो पहुंचे तो उनके पास ग्लासेस ही नहीं थी बात करने के लिए. और फिर उन्होंने फिर तो रिपेयर के लिए दिया, लेकिन एक क्लास बिना ग्लास के करनी पड़ी, बिना स्पेक्स के. तो इसी हाँ वही तो दिख भी नहीं रहा होगा ऑब्वियसली, बिना देखे ही जैसे हो गई ना क्लास. तो इसलिए कहते हैं कि लास्ट मिनट चेकलिस्ट, तो उसमें ग्लासेस चेक करने के लिए कहते हैं. और कहते हैं कि माइक, जहां हम जाएंगे वहां पे माइक ठीक से चल रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि माइक नहीं चलेगा, लाइट्स नहीं होंगी, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हम हर एकदम पॉलिश जगह पे नहीं जाएंगे. कहीं पर ऐसे विलेजेस में भी जाएंगे जहां पर कुछ कुछ होगा जिससे हम हलचल में आने का बहुत संभावना है. तो एक बार हम एक भाई के साथ गए थे, उनका टॉपिक था स्ट्रेस मैनेजमेंट और हमारा एकेडमिक टॉपिक था फर्स्ट एड और है ना इमरजेंसी पे. तो बहुत दूर थी ये जगह, तो जाते जाते गाड़ी पंक्चर हो गई. गाड़ी पंक्चर हो गई तो वो थोड़ा क्या होगा अभी. फिर वो दूसरे गाड़ी आई हमको लेने में. अब लंच का टाइम हो गया तो वो खाना भी नहीं खा रहे और हम तो खा रहे. फिर उसके बाद वो हो गया गाड़ी पंक्चर. तो मैं सोच रहा रे इनको तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे टॉपिक है. और फिर ना वहां पे गए और फिर वो ऐसे ऐसे कर रहे, नहीं मैं सैंडविच नहीं खाऊंगा, बोले ठीक है. फिर उनका पहले था, मेरा सेकेंड था. तो उनको पता चला माइक नहीं चल रहा है तो मुझे कह रहे तुम पहले बोलो. तो फिर है ना बोल दिया. तो और फिर जैसे ही उनकी टॉपिक आई तब तक माइक चालू हो गया और फिर वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे उन्होंने टॉपिक कराई. तो ये भी ध्यान में होना चाहिए कि कभी कुछ है ना ऐसी हलचल वाली भी परिस्थिति आएगी तो उसमें हमको कैसे स्टेबल रहना है. नेक्स्ट, कभी कभार हमको ऐसा टॉपिक मिलेगा जो बहुत बार बोल चुके लोग. तो उस जैसे हैप्पीनेस का टॉपिक था ना उस दिन कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, अनलॉकिंग हैप्पीनेस. अभी हैप्पीनेस पे तो यज्ञ में सबने ही बोल दिया ऑलरेडी, खुशी पर. तो उस पे क्या बोले, तो हमेशा एक अलग अलग वेज होने चाहिए हमारे पास. जैसे हमने यहाँ पर अभी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कराई, उस पर कभी कभार हमारी जो क्लास हो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो. जरूरी नहीं है कि बैठ के पूरा ही भाषण करना है. आजकल लोग फैसिलिटेशन के बारे में बात करते हैं कि हम कम बोलेंगे और पार्टिसिपेंट्स ज्यादा बोलेंगे. आजकल लोग उस चीज को लाइक करते हैं. तो कभी कभार भाषण को उस तरह से डिजाइन करना. और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा पूरा फोकस रहे. तो इसीलिए एक कोई ना कोई एक स्टेटमेंट बना ले जिस पर हमको बात करनी है. तो बार बार उस पॉइंट को रिमाइंड करें, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी. तो मैं जब भाषण करूं इस पर तो बार बार ये सेंटेंस आते जाए ताकि मेरा फोकस रहे कि मुझे क्या बात करनी है. वरना डिविएशन के बहुत चांसेस होते हैं, हम डिविएट हो जाते हैं टॉपिक से और कुछ और बोलने लगते. तो जैसे मधुबन में मधुमन, तो ऐसा नहीं कि मधुबन के सारे नाम गिना दूं मैं 10 मिनट तक और मधुबन में मधुबन के बारे में बात ही ना करूं, है ना. जैसे और क्या था, हिपी पुर्रे, ब्राह्मण जीवन में हिपी पुर्रे. तो वो क्या है, ऐसे नहीं कि सिर्फ हिपी पुर्रे पे ही बात करते जाए, ब्राह्मण जीवन में हिपी पुर्रे. तो कंसाइज स्टेटमेंट्स होने चाहिए हमारे पास. मेरी आवाज सुनो ना, माया के माया की लोरी. हाँ, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ माया पे बात करूं, माया कब आती है, माया कैसे आती है, लेकिन माया की लोरी मेरी टॉपिक है. तो वो फोकस हमेशा रहना चाहिए. तो ये कुछ पॉइंट्स थे. तो जैसे फर्स्ट था पर्पस, क्या पर्पस है हमारा, क्यों हमको टॉपिक कर रहे हैं, हम मैसेज देना है या परिवर्तन करना है समाज की सोच. सेकंड, हमारी ऑडियंस क्या है वो ध्यान में रखते हुए करना है. थर्ड, आउटलाइन करनी है पूरे टॉपिक की, वर्ड बाय वर्ड नहीं. और फिर उसके बाद नोट कार्ड्स होने चाहिए. इन्फॉर्मेशन फिफ्थ पॉइंट, इन्फॉर्मेशन गैदर, इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे अलग अलग सोर्सेस से. देन विजुअल एड्स होने चाहिए, देन नोट कार्ड्स, देन ओपनिंग विद इम्पैक्ट, देन क्लोजिंग, कंक्लूजन क्या है हमारा, और फिर एडिट एंड पॉलिश योर स्पीच, देन टाइमिंग योर स्पीच, देन कंसाइज स्टेटमेंट्स होने चाहिए हमारे, और एंड मिनट की हमारी चेकलिस्ट क्या होगी. तो ये मेन है भाषण कैसे करें. और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी है इसमें कि जब भी हम भाषण करें ना, तो कोई कोई हैपनिंग चीजों के बारे में, जो न्यूज में चल रहा है, जो हैपनिंग है उस टाइम पर, उस चीजों को भाषण में यूज करने की कोशिश करें, तो लोगों को अच्छा लगता है. कि जैसे वो स्टोरी था ना, जैसे वो लड़की जिसके पैर एम्प्यूट हो गए और फिर वो एवरेस्ट चढ़ी, वो तो जब वो न्यूज में आ रहा है उसको आप भाषण में यूज करेंगे तो लोग उससे कनेक्ट होते हैं फिर. तो उन चीजों को भाषण में यूज करना, अपने भाषण को बार बार रिहर्स करना. हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए कि हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आए भाषण को. फिर एक और चीज होती है, अवॉइड प्लेग्योरिज्म बोलते हैं. उसमें होता है कि हम किसी चीज का रेफरेंस लेते हैं लेकिन हम अपने आप को ऐसे नहीं बताए कि ये मैं बोल रही हूं, है ना. तीन प्रकार के लोग होते हैं. एक वो जो गॉसिप करते हैं, मतलब जो दूसरों के बारे में बताते अपने स्पीचेस में, उसने ऐसे किया तो उसने वैसे किया, मैंने उसने. दूसरे होते हैं जो बहुत बोरिंग होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में बताते, अपने बारे में ही है ना, थोड़ा ऊपर ऊपर का बताते रहेंगे, वो बोरिंग स्पीकर होते हैं. और जो ब्रिलियंट स्पीकर्स होते हैं वो ऑडियंस के बारे में बताते. तो ये ध्यान में रखते हुए बताना है. तो अगर किसी के बारे में या किसी की स्पीच से मैंने कोई सेंटेंस उठाया, जैसे मैंने कहा कि किसी को करेक्शन नहीं देना है, अगर आप किसी को करेक्शन दोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा. अब ये मेरी सोच नहीं थी, पर ये दादी ने कोई क्लास में बोला, तो मैं कहूंगी कि दादी जी ने ये क्लास में ऐसे बोला था, है ना. तो ये एक अलग रिस्पेक्ट से देखेंगे आपको लोग. तो ये चीज यूज करनी है. नेक्स्ट थिंग, मेमोराइज कैसे करना है स्पीच को. तो इसमें एक तो रिहर्सल करते रहो बार बार, बुलेट पॉइंट्स लिखो, उसको देखते रहो, और किसी फ्रेंड को सुना दो, या तो कहते हैं कि रिकॉर्डिंग कर लो पूरी और फिर उस रिकॉर्डिंग को सुनो. रॉन वाइट करके एक मेमोरी चैंपियन है, तो उन्होंने ये एक मेमोरी टेक्निक डिजाइन की. तो कैसे करना है इसमें, इसमें कहते हैं कि बुलेट पॉइंट्स लिख दो पहले. अब इस हर बुलेट पॉइंट को एक इमेज के साथ जोड़ो, जैसे कि कम्युनिकेशन, तो उसके साथ इमेज आएंगी फोन. ओके, अगर मुझे टीम वर्क पे बात करनी है तो इमेज आएंगी, कुछ भी कर सकते. टीम वर्क पे बात करनी है तो इमेज आएगी स्पोर्ट्स टीम. अगर मुझे फाइनेंसेस पे बात करनी है तो इमेज आएंगी डॉलर्स या नोट्स. अब क्या करना है, हम जहां पे रूम में रहते हैं अपने अपने, उस रूम में जितने भी फर्नीचर्स है उन सबको नंबर कर दो, है ना. जैसे अगर मैं अपने रूम के अंदर जाऊं तो शूज रैक है 1, फ्रिज है 2, देन टेबल है, देन बेड है, कबर्ड है, देन जिसपे हम खाना बनाते वो टेबल है, देन बुक्स के टेबल है, फिर बेड है, फिर लैपटॉप टेबल है. तो मैं अपने फर्नीचर को नंबर कर दूं. अब हर फर्नीचर को नंबर करने के बाद एक एक बुलेट पॉइंट्स को एक एक फर्नीचर पे रख दूं, और एक एक जितने इमोशंस जितने फीलिंग्स उतना ज्यादा रिमेम्बर होगा. तो जब मैंने शूज रैक को फर्स्ट पॉइंट रखा, पर्पस, मेरा फर्स्ट पॉइंट था पर्पस, तो उसके साथ मुझे कोई इमेज कनेक्ट करनी पड़ेगी. सेकंड पॉइंट था ऑडियंस, अभी ऑडियंस फ्रिज है तो उसमें मैं क्या करूं, तो मुझे देखना पड़ेगा. एंड वो कहते हैं कि मेंटली वॉक थ्रू योर रूम. अब माइंड से इस बुलेट पॉइंट्स को नंबर कर दो और फिर अपने रूम में ही घूमते जाओ और उस तरह से याद करो पॉइंट्स को. तो ये एक टेक्निक है जो हम यूज कर सकते हैं रिमेम्बर करने के लिए. और कहते हैं कि ये एक ही बार करना होता है, एक ही बार नंबरिंग करनी होती है, फिर हम कोई भी स्पीच में इस बुलेट पॉइंट्स को हर फर्नीचर पे रख के फिर यूज कर सकते हैं. और फिर क्या बोलना है वो तो हम पढ़ते ही रहते हैं दो तीन दिन जितने भी हमको मिलते हैं. सिर्फ बुलेट पॉइंट्स ही याद रखने और फिर उस हिसाब से बोलना है. तो ये है मेमोरी टेक्निक. नेक्स्ट है, कभी कभार हम लोगों को, जैसे हम यहाँ पे बैठे और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है और कहा कि टॉपिक करनी है, तो एक मेथड होता है डिडक्टिव मेथड, कि लोगों से ही पूछो और पॉइंट्स निकालो. जैसे उस दिन क्या हुआ, हम पीछे बैठे थे, वो बहन जी ने क्लास लिया तो उनका खत्म हो गया जल्दी, तो हमको बोला कि 2 मैजिक ऑफ ब्लेसिंग करनी है. तो एक हम प्रिपेयर करके आए थे, दूसरी हम प्रिपेयर नहीं करके आए थे. तो हमने जल्दी जल्दी पॉइंट लिखे. तो उसमें भी एक टेक्निक है कि जब आपके पास 10-15 मिनट है और किसी ने आके आपको बोला, आपको ना जाके 5-7 मिनट बोलना है थोड़ा. अब जब ऐसे हुआ तो वो कहते हैं कि एक पेपर ले लो, पेपर को 7 टाइम्स फोल्ड कर दो और 7 times फोल्ड करने के बाद जल्दी जल्दी लिख दो उसमें क्या आइडियाज आ रही है आपके माइंड में. हैपनिंग चीजों से कनेक्ट करोगे तो बहुत अच्छा. तो 7 चीजों के बारे में लिख दो और फिर वो आपके बुलेट पॉइंट्स हो गए और फिर आप उस पर बोलेंगे. एक ये मेथड है कि 7 points. कहते हैं कि हमारी हमारा जो ब्रेन है ना 7 points प्लस और माइनस ही रिमेम्बर कर पाता है, उससे ज्यादा नहीं. अनलेस आप बहुत ब्रेनी हो तो इतने पॉइंट्स वो रिमेम्बर करेगा. तो ये एक है कि 7 times पेपर को फोल्ड करके पॉइंट्स लिख दिए और उस पर बोले. और जो नेक्स्ट मेथड बोला डिडक्टिव, जैसे उस दिन जो था ना मैजिक ऑफ ब्लेसिंग वो था एंथुजियाज्म इन ब्राह्मण लाइफ. तो हमने थोड़ा सा बोला और हमने सबको पूछा हाँ सो ब्राह्मण लाइफ में एंथुजियाज्म कहाँ का है. तो सभी बोलते जा रहे थे, सब एक एक करके बोलते जा रहे थे, उसके पीछे दो दो सेंटेंस हम लगाते जा रहे थे. जबकि जो मैंने प्रिपेयर करके आई थी वो तो ठीक से नहीं हुआ. मुझे लगा वो ज्यादा वो अच्छा था क्योंकि सबने उसमें पार्टिसिपेट किया. तो एक ये है. और अभी आजकल जैसे इंस्टेंट मेथड यहाँ चल रहा है तो वो तो मतलब हम सोच रहे थे मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में ऐसा होता है इंस्टेंट मेथड की माइक दिया जाता है और कुछ बोलना पड़ता है, वो भी वो 3 minutes नहीं बोलते. हमको अभी तक लगता था कि छोटे लाल भाई मॉर्निंग में फोन करेंगे और शाम को जो होता है वो इंस्टेंट मेथड होता है कि लेकिन इंस्टेंट मेथड मतलब यहाँ बैठेंगे और बोलेंगे. तो इसके लिए हमारी मेमोरी जो हम इतना रीडिंग करते वही वहां पर यूज आता है. उसमें भी हम ज्यादा स्टोरीज नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 minutes होता है. तो 3 minutes में एग्जैक्ट फैक्ट्स और सब इन्फॉर्मेशन देनी होती है. और नेक्स्ट ह्यूमर कैसे यूज करना स्पीचेज में, मतलब जोक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप जोक्स क्रैक करते हो ना तो ऑडियंस आपको बहुत लाइक करती है और माहौल बहुत लाइट हो जाता है ना. तो और पता होना चाहिए कि जोक्स कब क्रैक करना है, ये भी पता होना चाहिए. अगर हमको कोई चीज पर बहुत स्ट्रेस करना है और हम चाहते हैं कि ऑडियंस इस चीज को रिमेम्बर करे तो उस वक्त जोक्स से कनेक्ट करना तो लोग हंसते भी है और लोगों को वो पॉइंट याद भी रहती है. जैसे हम यहां से बाहर जाएंगे तो वो याद रहेगा कि वो गिरा था वहां पर, वहां पे पीछे. तो क्योंकि वो सब हंसे ना उस पर तो बहुत लाइट हो जाते और लोगों को है ना, लोग क्वेश्चंस भी इजीली पूछने लगेंगे आपको क्योंकि वो है ना खुल जाते आपके साथ और कनेक्ट हो पाते आपके साथ. तो ये कुछ पॉइंट्स है कि क्यों ह्यूमर क्रैक करना है और करना ही चाहिए, नहीं तो बहुत सीरियस होंगे सब लोग और आपको सीरियस देख के फिर वो भी सीरियस रहेंगे. और नेक्स्ट है कि जोक्स कभी भी क्रैक कर सकते हो आप, स्टार्टिंग में भी, मिडिल में भी या एंड में भी. तो लेकिन इसको ओवरडू भी नहीं करना है कहते. अगर बहुत ज्यादा जोक्स क्रैक करेंगे तो आप कॉमेडियन तो नहीं हो यहाँ पर, तो आप स्पीकर हो है ना. तो इसलिए हमको ये भी पता होना चाहिए कि जोक्स कहाँ कहाँ हमको क्रैक करने हैं और कैसे क्रैक करने. जैसे कभी कभार स्पीकर का इंट्रोडक्शन देते हैं ना, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं स्पीकर का, तो उसमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए. मतलब अगर आपको इसमें जोक क्रैक करना है तो उसमें भी अलग अलग स्टेटमेंट्स है. थैंक यू नहीं बोलेंगे, थैंक यू आपने मेरे बारे में इतना बोला, ये ना बोल के ऐसे बोल सकते हैं कि इतना मेरे बारे में बोला आपने, अब मैं ही सोच रहा हूं कि मैं क्या बोलूं और मैं खुद रुका हूं अपने आप को सुनने के लिए मैं क्या बोलने वाला हूं. या तो एक स्टेटमेंट था उसमें कि हाँ इतना आपने मेरे बारे में बोला, मेरी तो सोने की जबान है लेकिन मैं आज अपनी जबान घर पे ही भूल के आ गया. मतलब कुछ ऐसे वीटी स्टेटमेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं जिससे पब्लिक को पता चले कि स्पीकर बहुत हम्बल है, अपने को बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं समझ रहे. तो ये सारे पॉइंट्स थे आज के. इसमें किसी को ऐड करना है इसमें कुछ कि भाषण कैसे प्रिपेयर करें? तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे, फिर कुछ टिप्स उसमें और कैसे ह्यूमर यूज करना है और इंस्टेंट मेथड में क्या करना है अगर हमारे पास 10 minutes 15 minutes है तो कैसे करना है और मेमोरी मेमोराइज कैसे करना है स्पीच को. तो ये था भाषण कैसे प्रिपेयर करना है. ठीक है, ओम शांति.